ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग गीता लीजिए, जो हिंदी पढ़ते हैं गीता लीजिए, यहाँ गीता रखी है, गीता लीजिए। ये गीता आपके ही लिए है, जो हिंदी पढ़ते हैं गीता ले लो। और ये आसन उठा लो, हरि बोल, ये दोनों आसन उठा लो, यहाँ रखे आसन उठा लो, आसन। तो ये भगवद गीता यथारूप है, अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 16, पृष्ठ संख्या 430। सबने निकाल लिया, उनको टेबल दो, माता जी को खाली गीता लिया है, टेबल नहीं लिया, टेबल लो। टेबल इसीलिए है कि गीता को आप रखना, रखने के लिए टेबल रखी है, टेबल है। सबने निकाल लिया, पेज नंबर 430 मिल गया। मेरे पीछे बोलिए, बहिरंतश्च भूतानां। क्या बात है, लगता है जैसे कोई है ही नहीं, बहुत थोड़े लोग बोल रहे हैं। सब लोग बोलिए, जिनके पास किताब नहीं है वो भी बोले, हर कोई बोले। किताब की भी जरूरत नहीं है, दोहराने के लिए पुस्तक की भी जरूरत नहीं है। सब लोग मेरे पीछे बोले, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तन्न विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चत। लगता है जैसे कोई है ही नहीं, दो तीन लोग, दो तीन लोगों की आवाज आ रही है, दिखाई दे रहे हैं इतने लोग, लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जब शोर करते हैं तो कितना शोर होता है, आसमान एक कर देते हैं, इतना शोर करते हैं, लेकिन गीता की आवाज में निकल नहीं, आवाज नहीं निकल रही है। बोली जोर से, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चत। और जोर से बोलिए, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चत। अभी भी ठीक से आवाज नहीं निकल रही, जोर से बोलिए, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चत। और जोर से, बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके चत। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, बहि, फिर आवाज बंद हो गई, जोर से बोलिए, बहि बाहर, अंतः भीतर, च भी भूतानां जीवों का, अचरम जड़, चरम जंगम, एव भी च तथा सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण तत् वह अभिज्ञेयम् अज्ञेय दूर स्थम दूर स्थित च भी अंतिके पास च तथा तत् वह अनुवाद मेरे पीछे बोलिए परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए भूमिका में पहला पेज भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग निकालिए सब लोग निकालिए उनका निकाल दो नहीं मिल रहा है किताब बदल लो या तो सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे श्लोक फिर से निकालिए इस श्लोक को समझेंगे भगवान कह रहे हैं बहिरंतश्च भूतानां वो परम सत्य जो ज्ञेय है जिसे जानना चाहिए जिसे जानने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वो कैसा है? वही अंतश्च, बाहर भी है और अंदर भी है, सबके जितने भी प्राणी हैं सबके बाहर भी है और अंदर भी है। चरम अचरम, अचरम चरम, अचर हो चाहे चर हो, दो प्रकार के प्राणी हैं, अचर और चर। अचर जैसे वृक्ष हैं, लता, घास, पर्वत, ये क्या है? अचर। और चर पशु पक्षी मनुष्य जलचर, ये सब चर हैं। तो दो प्रकार के प्राणी हैं, अचर और चर। तो जितने भी अचर और चर प्राणी हैं सबके बाहर भी और अंदर भी वो हैं। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्, सूक्ष्म होने के कारण वो जाने नहीं जाते, उनको जानना मुश्किल है। दूरस्थम चांत के चतर, वो दूर भी हैं और पास भी हैं। दूरस्थम, दूर भी स्थित हैं और पास भी हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। तो ये वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है कि भगवान परम पुरुष सबके अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, है ना? केवल अंदर ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं अंदर हैं, हमें अंदर देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अंदर देखा करो, है ना? अगर आप केवल अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं भगवान को, तो आपका ज्ञान पूरा नहीं है। अगर आप जो है अपने अंदर तो भगवान को देखते हैं और बाहर नहीं देखते भगवान को, तो आपका ज्ञान अधूरा है। अंदर भी है बाहर भी है, है ना? तो वैदिक साहित्य में बताया गया है कि वे प्रत्येक प्राणी के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपे प्रियच्छतो मृत्युमतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम, जितने भी देहधारी हैं अंतर्बहि पुरुष काल रूपे, अंदर पुरुष रूप में है और बाहर काल रूप में है। तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूप है, अंदर पुरुष के रूप में है और बाहर काल के रूप में है। अगर आपकी दृष्टि बाहर भोगों की तरफ है, आप भोगों को भोगना चाहते हैं, तो भगवान किस रूप में है? मृत्यु के रूप में है सब। तो आपको भगवान का दर्शन होगा किस रूप में? मृत्यु के रूप में। और अंदर अगर आप देखना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान की जो है भगवान की मूर्ति है पुरुष रूप में, भगवान जो है आपको दिखाई देंगे, इस अर्चविग्रह के रूप में दिखाई देंगे। तो अगर आपकी जो है दृष्टि आंतरिक है, तो आपको भगवान का दर्शन होगा पुरुष के रूप में। अगर आपकी दृष्टि बाहर भोगों की तरफ है, आप भोगों को भोगना चाहते हैं कि भोग हर जगह भोगों को देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ भोग हैं, कहाँ मैं भोगूं, कैसे भोगूं, इंद्रिय तृप्ति करूं, है ना? तो आपको भगवान मिलेंगे किस रूप में? बाहर मृत्यु के रूप में, है ना? अंतर बहि पुरुष काल रूप है प्रियच्छतो मृत्युम मतामृतम चा, तो बाहर काल रूप में मृत्यु प्रदान करते हैं और अंदर पुरुष रूप में अमृत प्रदान करते हैं। अगर आपकी अमृत पाने की इच्छा है, आप नहीं चाहते मरना नहीं चाहते हैं, तो आपको भगवान की कथा सुनना चाहिए अंदर। किसको कहते हैं अंदर? आप कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, तो ये अंदर तो आपको अंदर पुरुष रूप में दिखाई देंगे, है ना? लेकिन अगर आप संसार को भोगना चाहते हैं, मेरा तेरा करते हैं, हैं? हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, हर चीज पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, हैं? आप मालिक बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं, हैं? तो आपको भगवान मिलेंगे किस रूप में? काल के रूप में, काल के रूप में, हैं? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीनने वाला काल, मृत्यु, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान है, वैकुंठ जगत में भगवान है। किस रूप में? पुरुष के रूप में है, है? और सबको क्या प्रदान करते हैं? अमृत प्रदान करते हैं। और इस भौतिक जगत में भगवान है, है? जिनकी दृष्टि भौतिकता में है, उनको क्या प्रदान करते हैं? मृत्यु प्रदान करते हैं। तो ये जो है पूरी भौतिक सृष्टि क्या है? मृत्यु संसार, मृत्यु संसार सागर, यहाँ पर मृत्यु ही मृत्यु है। तो भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। तो अगर हम वहाँ जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं, तो हमको अमृत प्राप्त होता है, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमको पुरुष रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि अमृत प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन आप अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं तो भगवान हमको काल के रूप में प्राप्त होते हैं, और क्या प्रदान करते हैं? मृत्यु, मृत्यु प्रदान करते हैं, है ना। तो वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। हाँ, इसका यही मतलब है, बहिर अंतस्थ, बाहर और अंदर, है ना। तो भौतिक जगत के अंदर है भगवान, है? तो किस रूप में है? मृत्यु के रूप में है। और बाहर है यानी आध्यात्मिक जगत में है भगवान, किस रूप में? पुरुष के रूप में अमृत प्रदान करते हैं, है ना। और यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। वे बहुत दूर हैं, आध्यात्मिक जगत में है, पुरुष रूप में लीलाएं करते हैं भगवान, लेकिन हमारे बहुत निकट हैं। अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं वे, तो वे दूर नहीं है। भगवान, हम भगवान से दूर हो गए हैं, लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं हुए। हम भगवान से दूर हो गए, हम वहां से आए, हमने भगवान को छोड़ा, हम भगवान से बहुत दूर आ गए, लेकिन भगवान हमारे पास में है। भगवान हमारे पास में है, कैसे हैं? उन्होंने अपना परमात्मा रूप में विस्तार किया है हमारे हृदय में, साथ में रहते हैं। तो दूरस्थम चांति के चता, वो दूर हैं। भगवान जो है पुरुष रूप में, भगवान के रूप में अपने आध्यात्मिक जगत में है, लीलाएं कर रहे हैं, और हमने उनको छोड़ दिया, हम दूर आ गए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? अपने बच्चों को संभालिए, किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? तो भगवान हमसे, हम भगवान से बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। हमारी प्रत्येक गतिविधि जानते हैं, और हमारे हृदय में अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में, है ना। तो दूरस्थम चांद के चतत, वे दूर हैं और फिर भी हमारे पास हैं। और हम दूर होते हुए भी अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, दूर से भी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। उनके लिए इतनी दूरी भी कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी दूरी, हम नहीं जा सकते वहां, हमारे पास शक्ति नहीं है भगवान के पास जाने की। हम जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी दूरी है भगवान के साथ, हमारी कितनी दूरी है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, नाप नहीं सकते उस दूरी को। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान आ जाते हैं। अब वैकुंठ से आ जाते हैं भगवान, है ना, तो उनके लिए कुछ भी दूरी नहीं। उन्होंने अपना परमात्मा के रूप में अपना विस्तार भी किया हुआ है, वैसे ही हमारे निकट हैं। और अगर साक्षात भगवान आना चाहें तो वो भी आ जाते हैं वैकुंठ से, उनके लिए वो भी कठिन नहीं है। बहुत आसान है। गजेंद्र ने जब पुकारा, एक हाथी था, एक हाथी सरोवर में पानी पीने गया और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और बहुत उसने प्रयास किया अपने को छुड़ाने का, लेकिन मगरमच्छ से वो छोड़ नहीं पाया। तो उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान वैकुंठ से आए गजेंद्र की रक्षा के लिए, एक हाथी को बचाने के लिए भगवान आए। सोचिए, दूरस्थम चांदी, इतने दूर हैं लेकिन तुरंत आ गए भगवान, हाथी को बचाने के लिए आ गए और चक्र से मगरमच्छ का मुंह काटा और हाथी का पैर निकाला भगवान ने, है ना। तो भगवान जो है दूर होते हुए भी बहुत पास आ जाते हैं, है ना, और पास में वैसे भी है परमात्मा के रूप में। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये वैदिक साहित्य के वचन हैं, आसीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद 1:21। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतः हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इन भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते ना हम समझ सकते हैं। अगर हमें उनको देखना है, तो प्रभुपाद समझाएंगे हम कैसे उनको देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वो उन्हें निरंतर देख सकता है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए मन और इंद्रियों को अगर हम शुद्ध कर लें तो हम निरंतर उनको देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ये बताया गया, क्या वो श्लोक है, वो है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय सुविलोके अंति। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, भक्ति के नेत्र होने चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। ये नेत्र नहीं, इन नेत्रों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये नेत्र चर्म चक्षु कहलाते हैं, इनको कहते हैं चर्म चक्षु, चमड़े के नेत्र हैं, इनसे हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमें भक्ति के नेत्र चाहिए। भक्ति के नेत्र में भी प्रेम का अंजन लगाना है। पहले बात तो भक्ति के नेत्र होने चाहिए, फिर भक्ति के नेत्र में भी प्रेम का अंजन लगाना। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। तो संत लोग जो है प्रेम का अंजन लगा लेते हैं भक्ति के नेत्रों में, तो सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, सदा हृदयों में दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। श्याम सुंदर, श्याम श्यामल, उनका रंग कैसा है, श्यामल है, श्यामल रंग के हैं और सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं और सुंदर हैं और अचिंत्य गुण है स्वरूपम। उनके गुण कैसे हैं, अचिंत्य हैं। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी, तो ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो यहां पर ऊपर लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवद गीता में 11:54 इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है, भक्तिया तुरन ने आ सक्या। तो 11:54 ग्यारहवें अध्याय का ये श्लोक संख्या 54, इसमें भगवान कहते हैं, भक्त्या तुरन्यासक अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। कि अनन्य भक्ति के द्वारा भक्तिया तुरन्न आ सकते है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही सक एवं विधो अर्जुन, इस प्रकार से कोई व्यक्ति मुझे पा सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च, कि मुझे तत्व से जान भी सकता है और तत्व से देख भी सकता है और तत्व से प्रवेश भी कर सकता है। तीनों चीजें, तत्व से भगवान को जाना भी जा सकता है और तत्व से भगवान को देखा भी जा सकता है और तत्व से भगवान की लीला में प्रवेश भी किया जा सकता है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, भगवान की लीला में प्रवेश करना है। जैसे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी का शरीर इस समय नहीं है, प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की नित्य लीला में वो प्रविष्ट हो गए, आप समझे। तो भगवान की नित्य लीला में हमारा कोई स्थान है। तो जीवन की सबसे बड़ी जो सफलता है वो ये है कि भगवान की नित्य लीला में हमें वो स्थान प्राप्त हो जो स्थान हमारा है। ये कोई नई चीज नहीं है, नित्य लीला में हमारा स्थान जो पहले से है उसी को प्राप्त करना है। भगवान की नित्य लीला में हमारा स्थान अभी खाली पड़ा है और हमको जाना है उसमें। ये कोई थोपने वाली बात नहीं है कि नहीं आप जो है कोई आपके ऊपर थोपा जा रहा है। प्रत्येक जीव का भगवान के नित्य लीला में कोई स्थान है। जैसे किसी मशीन में कोई छोटा सा भी पुर्जा होता है ना, तो जब उसमें मशीन लगा देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है कि नहीं। छोटा सा पुर्जा है, मशीन में लगा देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, काम करता है, और मशीन से अलग हो गया, गिर गया, अब उसका कुछ भी कीमत नहीं, बेकार है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान की नित्य लीला में हमारा स्थान है तो हमारा बड़ा महत्व है। लेकिन उसको छोड़ करके हम इस भौतिक जगत में आए हैं, है ना, अब कुछ भी महत्व नहीं है, सड़ रहे हैं। इस भौतिक जगत में हमारा कुछ भी कार्य नहीं है सिवा दुख भोगने के, और कुछ भी कार्य नहीं। इस भौतिक जगत में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिवा दुख भोग रहे हैं, दुख ही दुख भोग रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, केवल दुख भोग रहे हैं, केवल दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हमने अपना स्थान छोड़ दिया है ना। वो विधि क्या है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने की, भक्तिया अनन्या, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को देख सकता है, तो भगवान को हम देख सकते हैं, क्यों, भगवान का रूप है, इसलिए निराकार नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, जैसे यहां पर कहा भगवान बाहर भी अंदर भी है, तो कैसा लगता है, फिर तो निराकार है। तो कई लोग व्याख्या करते हैं, इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, तो कैसी व्याख्या करते हैं, निराकार। यहाँ कहा गया कि भगवान सबके बाहर भी अंदर भी हैं, तो कैसा लगता है, हाँ हवा की तरह होंगे भगवान, आकाश की तरह होंगे भगवान, बाहर भी हाँ और अंदर भी, जैसे आकाश होता है ऐसे निराकार हैं भगवान। लेकिन नहीं, निराकार नहीं है भगवान, भगवान का रूप है, और फिर भी वे सबके बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। भगवान सबके बाहर भी अंदर भी हैं, उनका रूप है, उनका रूप देखा जा सकता है, भगवान का रूप है। कैसा रूप है, श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर रूप। और श्री रामचंद्र है ना, भगवान जो है श्री राम का रूप धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं, और गौरचंद्र का रूप धारण करते हैं भगवान, चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीलाएं करते हैं, है ना। तो इस सब जो है भगवान के रूप हैं, अचिंत्य गुण स्वरूपम, उनके अचिंत्य गुण हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद 11:54 की बात कर रहे हैं, तो आप लोग निकालिए अध्याय 11 का श्लोक संख्या 54। सब लोग निकालिए अध्याय 11 का श्लोक संख्या 54। ये पेज नंबर 393 में है। पेज नंबर 393 जिसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो सिर्फ प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वो कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा महीने की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है। क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो वे भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेतासुतर उपनिषद में 6:23 हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वो भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से ये सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है किस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था। जैसे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं, कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, ये स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारण समुद्र में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:48 कहा गया है, जैश्वसित काल मथावलंब जीवन दिलो में मिल जा जगदंड नाथा विष्णुर्महां कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी। जिनके श्वास देने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद्गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापी उपनिषद में एक एक निम्नलिखित कथन आया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्णो वे परमम देवतम, कृष्ण भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:3, एको वशी सर्व कहा कृष्ण इतिहा, वो कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको प्रसन्न बहुधा योग भाती, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी 1:21, ब्रह्मसीता 5:1 का कथन है, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म है नराकृति, भगवान एक व्यक्ति है उसका नाम कृष्ण है और वो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब ये कहा गया है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चांच कला पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मद्धा परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है, अहम आदिर हे देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं, परम ब्रह्म है परम धाम है पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वो उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है, ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को ये विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उन्हें भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए वे विश्व रूप से मोहित नहीं हुए। ये रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो ये जो है कुछ बातें हैं जो आज के श्लोक में भगवान ने बताई हैं और हमने समझी हैं। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई आप लोगों की ओर से चर्चा? हाँ बोलिए। जुड़े हुए पृथ्वी से जुड़े हुए अन्य के लिए पृथ्वी से जुड़े हुए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बहिरंतश्च भूतानाम, जितने भी प्राणी हैं उनके वे अंदर और बाहर स्थित हैं, सबके अंदर बाहर स्थित हैं, सबका पालन करते हैं। भगवान जितने प्राणी हैं सबका पालन करते हैं, सोचिए भगवान कैसी शक्ति है, है? सबका पालन करते हैं, सबको भोजन देते हैं। एक वो बहु नाम जो विदधाति कामान, वो एक हैं और सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। जितने भी जीव हैं उनकी कामनाओं को जानते भी हैं। अब किसके हृदय में क्या कामना है, है? उसी को पता है, है? दूसरे को तो पता नहीं होता। मेरे हृदय में क्या कामना है, आपके हृदय में क्या कामना है ना? तो मेरे हृदय में क्या कामना है वो मुझे पता है, आपके हृदय में क्या कामना है आपको पता है, लेकिन भगवान को सब पता है और भगवान सबकी कामनाएं पूरी करते हैं हृदय में, है? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे तुरंत ही कामना पूरी करें, वो कई जन्मों के बाद भी पूरी करें, इसी जन्म में पूरी करें, अगले जन्म में पूरी करें, या 10 जन्मों के बाद पूरी करें, या पूरी करेंगे। तो वो अंदर हैं और बाहर हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं सब प्राणियों के अंदर हूँ, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई अपने को कहता है कि मैं भगवान हूँ, है ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो मेरे अंदर क्या है बताइए, मेरे अंदर क्या विचार आ रहा है बताइए, नहीं बता पाएगा। तो लोग अपने को भगवान कहने में बड़ा मजा लेते हैं कि हम भी भगवान तुम भी भगवान, कौन भगवान है, क्या मैं भगवान हूँ या आप भगवान हैं, कौन भगवान है, कोई भगवान नहीं है। कौन कह सकता है कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सबके अंदर हूँ, कौन कह सकता है, लेकिन वे भगवान सबकी कामनाओं को जानते हैं और सबकी कामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके हृदय में क्या कामना है, और आपके हृदय में भी कामना है कुछ और फिर आप भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। 10 साल पहले आपने कुछ इच्छा करी थी, अभी आप भूल चुके हैं, अब आपके अंदर वो इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के पास नोट हो चुकी है कि आपने वो इच्छा करी थी, भगवान पूरी करेंगे आपकी इच्छा। तो भगवान को जो है बताने की जरूरत नहीं है, भगवान को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी क्या इच्छा है। कोई कहता है भाई अपनी इच्छा बताओ, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा बताओ, तो भगवान को जो है पूछने की भी जरूरत नहीं कि आप बताइए अपनी इच्छा, उनको पता है, और भगवान स्वयं भी नहीं बताते कि आपके अंदर क्या इच्छा है, भगवान पूरी करते हैं। भगवान जो है सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, एको बहु नाम यो विदधाति कामान, तो अकेले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे ऊपर है कि हम कैसी इच्छा कर रहे हैं। अगर हम गलत इच्छा कर रहे हैं तो भगवान इच्छा पूरी करेंगे, है ना। तो अच्छा यह है कि हम शरण लें भगवान की, शरण लें कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, ये हम लोग जो जप कर रहे हैं, क्यों जप कर रहे हैं? ताकि अपनी इच्छा, हमारी इच्छा शुद्ध हो। गलत इच्छा करेंगे तो क्या होगा? भगवान इच्छा पूरी करेंगे उसका हम कष्ट भोगेंगे कि नहीं। जैसे कि बच्चे के अंदर इच्छा होती है आग पकड़ने की, बच्चे के अंदर इच्छा होती है आग पकड़ने की, लेकिन इच्छा सही तो नहीं है, गलत है, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण बच्चा जो है आग पकड़ना चाहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर अज्ञान के कारण अनेक प्रकार की गलत इच्छाएं हैं। तो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध करें और भगवान से उसके लिए भी गाइडेंस मांगें कि हमें गाइड करिए कि हम कैसी इच्छा करेंगे, है ना। तो भगवान जो है हमें गाइडेंस देंगे कि हमें कैसी इच्छा करना चाहिए। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हमें गाइड किया हमें कैसी इच्छा करनी चाहिए। तो शिक्षास्त्र में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गे द्वयी, जन्म जन्म में मुझे आपके अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, ये इच्छा हमें इच्छा करना चाहिए कि जन्म जन्म में मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। अगर कुछ और इच्छा करोगे तो संसार में कष्ट ही कष्ट भोगोगे, इसी संसार में रहोगे। तो हमारी ये इच्छा होनी चाहिए ये हरे कृष्ण मंत्र है, हम इसका जप कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो हम सेवा मांग रहे हैं भगवान से, है ना। ये हमारी ये इच्छा होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, और हम सेवा अगर नहीं मांगेंगे तो माया की सेवा में लगे। जितनी इच्छाएं हैं वो सब माया की सेवा में जाएंगी और कष्ट भोगना पड़ेगा। या तो आप माया की सेवा करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, और माया की सेवा में क्या मिलता है? कष्ट और मृत्यु और अज्ञान। माया की सेवा में आपको क्या मिलता है? कष्ट, मृत्यु और अज्ञान। और भगवान की सेवा में क्या मिलता है? सुख, अमृत और ज्ञान, सच्चित आनंद। तो हमें जो है बहुत सावधानी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर आप जो है भगवान से सेवा नहीं मांगेंगे तो माया की सेवा में आप लगे हैं और लगे रहेंगे, और उसमें आपको क्या मिलेगा? हमेशा कष्ट, मृत्यु, अज्ञान। मृत्यु, बार बार मृत्यु मिल रही है, बार बार मृत्यु आपको, बार बार 84 लाख योनियों में शरीर मिल रहा है। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी कीड़े बनते हैं, जलचर बनते हैं, पक्षी बनते हैं, और बार बार मृत्यु, बार बार मृत्यु हो रही है। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ अच्छा प्रश्न है माता जी का। माता जी कह रही हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं, समाज परिवार के कई बंधन होते हैं जिनमें बाधा पड़ती है, भक्ति में बाधा पड़ती है। देखिए हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जो है इतनी शक्ति है, हरे कृष्ण मंत्र बोलने की शक्ति है। आप बोलिए, ये अगर आप बोल रहे हैं, ये आपको जो है मनुष्य जीवन मिला है, आप ये बोल सकते हैं। अगर आप इतने ही बोलते रहते हैं तो इसके द्वारा आप छूटेंगे बंधन से। ये बंधन जो है हमारी शक्ति नहीं छूटने की, ये समाज के, परिवार के, शरीर के जो बंधन है, हम बंधे हैं, हमारी शक्ति नहीं छूटने की। लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं कि मुझे छुड़ा रही, मुझे निकालिए, तो निकालेंगे भगवान, ठीक है ना। आप नियम बनाइए, माला पर जप करने का नियम बनाइए कि कितनी माला जप करोगी, डेली एक माला जप करो, दो माला जप करो, ठीक है ना, ये नियम बनाइए। और कम से कम का नियम बनाओ कि कम से कम कितना माला जप करेंगे, ये नियम बनाओ, ठीक है ना। और जितनी माला हुई है, अगर कम हुई है, उसको अगले दिन पूरा करो। तो ये अगर आपने ये नियम बना लिया तो इससे अगर आप बन गए तो आप हजारों कष्टों से छूटेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी मुझसे हमेशा बोलो, बिना माला के भी बोलो, मुझसे हमेशा बोलो। अब मुझसे या तो फालतू की बातें करोगे या हरे कृष्णा बोलोगे, तो हरे कृष्णा बोलो, फालतू की बातें ना करके हरे कृष्णा बोलो, है ना। काम कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, तो मुझसे हरे कृष्णा बोलो। तो इतना भी अगर आप करेंगे तो इतने से आपको भगवान छुड़ाएंगे, धीरे धीरे छूटेंगे, लेकिन छूटेंगे आप। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौंडताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।